अभिजीत ने तंज कसा था उस पर। राधिका को लगा जैसे उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मिस्टर अभिजीत सहगल, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, क्योंकि आप एक मर्द हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पर मुझ जैसी लड़कियों के लिए ये इतना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब उसका अपना परिवार उसका साथ छोड़ दे, वो दूसरों पर आश्रित हो, उसके कंधों पर परिवार की इज्जत, ससुराल की मर्यादा, मम्मी पापा के संस्कारों और बहनों के भविष्य का बोझ रखा हो। आपकी ही तरह मैंने भी उसी दिन उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गलत तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था ना। मुझे तो अपने लिए एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश थी जो मुझसे प्यार भले ना करे पर मेरी इज्जत करे। और शादी की पहली रात ही मेरा वो ख्वाब शीशे के महल जैसे टूटकर बिखर गया था, जिसकी कीचें आज भी चुभती हैं मुझे। जिस शख्स ने मेरी असमत को अपने अहंकार तले रौंदा था, मैं भी एक पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। जब जब उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, मैंने उस रिश्ते से आज़ादी पाना चाही, पर मेरी कुछ मजबूरियां थीं जिसके कारण मुझे न चाहते हुए भी सब सहना पड़ा। उस शख्स के साथ एक कमरे में एक छत के नीचे रहना पड़ा, जिसने हर रात मेरे वजूद को अपनी हवस की आग में झलसाया है। अच्छा, मजबूरियां थीं आपकी? आप लड़कियों की मजबूरियां ही बहुत होती हैं। खैर, जरा ये तो बताइए कि वो मजबूरियां जिनके कारण आप अब तक अपने पति के साथ थीं, अब कहाँ गईं, और अब क्यों आप उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं? इस बार भी उसने मजाक ही उठाया था उसका, और गुस्से व अपमान की शिद्दत से उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। खत्म हो गई वो मजबूरी भी, वो उम्मीद भी, वो वजह भी, और वो इंसान भी, सब कुछ खत्म हो गया। इतना सब सहा मैंने, पर ना मेरी माँ बची ना मेरा बच्चा। वो आदमी उस लड़की को घर ले आया, उसके सामने मेरे इंसल्ट की, हमारे रिश्ते को जलील किया, मेरी सच्ची निष्ठा और समर्पण का मजाक बना दिया, मेरी वफादारी को गाली दी, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी माँ को घुटघुट कर मरने पर मजबूर कर दिया, रिश्तेदारों से भरे घर में मुझ पर हाथ उठाया, मेरे पापा से बदतमीजी की। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती, इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है मुझ में, और ना ही वजह है। अगर आप मेरा केस लड़ सकते हैं तो बताइए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास बर्बाद करने को। अगर मैं केस लड़ने से मना कर दूं तो क्या करेंगी आप? दूसरा वकील ढूंढूंगी। इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरे हक के लिए लड़ने को तैयार होगा और जिसे अजय की धमकियों से डर नहीं लगेगा। तेवर तो बहुत तीखे हैं आपके, कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं, पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं, फिर कैसे इतने वक्त तक इतना सब गलत सह गईं आप? अब की बार अभिजीत काफी सीरियस लग रहा था। मैंने कहा ना, मेरी मजबूरियां थीं, मैं कमजोर कभी से नहीं थी और गलत सहना भी नहीं आता था मुझे, पर पहले पढ़ती थी कि वक्त और हालात इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। अब जब जिंदगी की मार पड़ी तो देख भी लिया। आप डिवोर्स के साथ क्या चाहती हैं? मैं बस इस रिश्ते से आज़ादी चाहती हूँ, और साथ ही ये भी चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद वो मुझे या मेरे परिवार को तंग ना करे। मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। कोई सज़ा नहीं दिलवाना चाहती आप उसे? नहीं। कोर्ट में कौन कौन सी बात सामने ला सकती हैं आप? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और मुझे बस इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। कानून के बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं, तो आप खुद देख लीजिए। आप अपने पति के इतना तो जानती ही होंगी कि अगर केस शुरू हुआ तो वो आपको अपने साथ रहने पर मजबूर करने के लिए कुछ भी करेगा। हो सकता है वो कोर्ट में झूठे सबूत और गवाह खड़े कर दे, और आपके लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाए। फेस कर लेंगी सब? अब तक किया है तो आगे भी कर लूंगी। अच्छा, आपने कहा कि वो आपके घर के बाहर आकर हंगामा मचाता है, इसका कोई सबूत है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग? है, मेरी बहन के पास। वो कहती है कि केस में काम आएगा, इसलिए जब जब वो घर आकर तमाशा करते हैं, वो खिड़की से छुपकर सब रिकॉर्ड कर लेती है। ये सुनकर अभिजीत के लबों पर प्रशंसा भरी मुस्कान उभर आई। काफी इंटेलिजेंट है आपकी बहन। एक काम कीजिएगा, आप वो वीडियो मुझे सेंड कर दीजिएगा, और अगर आपके पति की गर्लफ्रेंड के बारे में आप कुछ जानती हैं, कोई सबूत है आपके पास ये साबित करने का कि उसने आपको चीट किया है, तो वो भी मुझे दे दीजिए। कुछ तस्वीरें हैं, पर वो शायद ज्यादा काम ना आ सके, वो बहुत चालाक है, बड़ी आसानी से उन्हें छुटलाकर बात का रुख मोड़ देंगे। आप तस्वीरें भेजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, पर पहले आप अपनी फीस तो बता दीजिए। आपकी आज़ादी ही मेरे केस लड़ने की कीमत है। क्या मतलब? राधिका ने चौंकते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। अंकल से वादा किया है मैंने कि उनकी स्टूडेंट को उन्हें लौटाऊंगा, तो ये केस मैं प्रोफेशनली नहीं पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ, और यहाँ आपकी आज़ादी ही मेरी फीस है। अभिजीत ने उसकी उलझन दूर की। जैसे ही राधिका को पूरी बात समझ आई, वो हड़बड़ाते हुए बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। आप अपनी फीस बताइए, उसके बाद ही आगे कोई बात होगी। राधिका का ये अंदाज देखकर अभिजीत ने पहले ताज्जुब से उसे देखा, फिर उसके मन में कुछ आया और हल्की मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। बड़ी जिद्दी भी हैं आप, आपको देखकर मुझे अपनी मिसेज की याद आ गई। उसे मुद्दे से भटकते हुए राधिका जरा चिढ़ गई। आप अपनी फीस क्यों नहीं बताते? आप जानती हैं मेरी फीस कितनी ज्यादा होती है, अफोर्ड कर पाएंगी आप? अभिजीत ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए आंखें चढ़ाकर उसे देखा। राधिका के माथे पर बल पड़ गए। जानती जो थी कि मुंबई का जाना माना वकील है, तो फीस भी बढ़िया ही होगी। उसे यूं परेशान देखकर अभिजीत ने जरा नरमी दिखाई। चलिए, ना आपकी ना मेरी फीस ले लेता हूं मैं आपसे, पर पैसों में नहीं। तो और क्या चाहते हैं आप मुझसे? राधिका ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसकी एक्सप्रेशन देखकर अभिजीत की हंसी छूट गई, जिससे राधिका और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अर्पिता आपकी ही बहन है ना? अभिजीत ने कुछ पल बाद सवाल किया। राधिका उसके मुंह से अर्पिता का नाम सुनकर एक बार फिर चौंकी। आप अर्पिता को कैसे जानते हैं? मेरी फैन है वो और मैं उसका रोल मॉडल। उसके स्कूल में सेमिनार में गया था मैं, जहाँ उससे मुलाकात हुई। काफी प्यारी बच्ची है और यूनिफॉर्म वाले प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट है उसे। कुछ दिन पहले उसका मेल आया था कि लॉ करके वकील बनना चाहती है। वजह यकीनन आप ही होंगी। मैंने कहा कि इंटर्नशिप के लिए मेरे पास मुंबई आ जाए, पर उसने कहा कि आप इतनी दूर नहीं जाने देंगी उसे। तो मेरी फीस ये है कि आप अपनी बहन को प्रैक्टिस के लिए मेरे पास भेज दें। मुझे उसे कानून के दावपेच सिखाने में बहुत खुशी होगी। राधिका सोच में पड़ गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने हामी भर दी। दोनों के बीच कुछ और बातें हुई, फिर राधिका चली गई और उसके जाते ही अभिजीत ने आकाश को फोन लगा दिया। आकाश का कनेक्शन मेरी अस्मिता कहानी से है। हेलो आकाश, एक अर्जेंट हेल्प चाहिए तुझसे। बोलो क्या काम है? एक लड़के की फोटो और नाम भेज रहा हूँ। इसकी पूरी जन्म कुंडली निकलवानी है और लड़का दिल्ली का है। काम हो जाएगा, बस एक दो दिन का वक्त दो। काम के बाद दोनों के बीच कुछ पर्सनल बातें हुई, फिर अभिजीत ने कॉल कट किया और अजय की अगले ठिकाने लगाने के इंतजाम में लग गया। राधिका जब घर पहुंची तो आज उसके चेहरे पर खुशी और सुकून के भाव मौजूद थे। रात को जब उसने बाकी सबको ये बातें बताई तो वो सब भी खुश हो गए और उन सब में सब ज्यादा खुश और एक्साइटेड अर्पिता नजर आई। उसकी खुशी डबल थी। एक तो अभिजीत राधिका का केस लड़ने वाला था, मतलब जीत का उनके कदम चूमना तय था, और उसे आगे मुंबई जाकर अभिजीत के अंडर काम करने का मौका मिलने वाला था, जो इस बीते एक महीने में उसका सपना बन गया था।
अजय के पास जब डिवोर्स का नोटिस पहुंचा तो उसका माथा ठनक गया, क्योंकि इस बार उसे कानो कान खबर नहीं हुई थी राधिका के किसी वकील से मिलने की। उस दिन तो वो दोपहर में ही उसके घर के बाहर आधमका था। घर पर राधिका अकेली थी और अजय जबरदस्ती घर में घुस आया था। दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में अजय ने राधिका का सर दीवार पर दे मारा, खूब गालियां दी और धमकाते हुए चला गया। किसी पड़ोसी ने उसके जाने के बाद राधिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और आशुतोष जी ने अभिजीत से बात करके पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। अभिजीत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, सबूत समेत गवाही इकट्ठे कर लिए। अजय को जो पुलिस के डंडे पड़वाए वो अलग, और दो दिन बाद ही डिवोर्स केस की सुनवाई भी रखवा ली, जहां दोनों तरफ के वकील आपस में भिड़े। जैसा कि अंदाजा था, अजय के वकील ने झूठे सबूत और गवाही इकट्ठे कर रखे थे और कोई कसर नहीं छोड़ी थी राधिका को चरित्रहीन साबित करने में। सच को झूठ का जामा पहनाया गया था और झूठे आरोपों को सच्चाई का रूप देकर ऐसे सामने लाया गया जैसे सच में हर चीज में गलती राधिका की ही हो और बेचारा अजय निर्दोष। पर दूसरी तरफ कमान अभिजीत ने अपने हाथों में संभाली थी, जो पहले ही अजय की सारी जन्म कुंडली निकलवा चुका था और ऐसे दावपेचों से अच्छी तरह वाकिफ भी था। उसने तो अस्मिता की केस को जीता था, यहां तो मामला इतना भी पेचीदा नहीं था। बस कुछ सवाल और सारे गवाह धराशायी हो गए। झूठे सबूतों की भी पोल खोलकर रख दी। एक के बाद एक राधिका पर लगे सभी इल्जामों को झूठा साबित किया और फिर शुरू हुआ अजय की असलियत सबके सामने लाने का सिलसिला। राधिका के साथ जबरदस्ती करने से लेकर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसके वजह से हुआ राधिका का अबॉर्शन सब कोर्ट के सामने लाया गया, वो भी सबूत के साथ। अजय की रंगीन मिजाज और शादी से पहले रहे लड़कियों से रिश्ते सब पर से पर्दा उठाया गया और उसके खिलाफ गवाही देने वाले विजय भैया और मालती भाभी थे। उस रात के हादसे के बारे में कोमल ने अदालत में सब बताया था। इसके अलावा अजय के राधिका के प्रति व्यवहार के बारे में भी उसने सब सच सच बता दिया था। उसकी उस महबूबा तक को अभिजीत कोर्ट में घसीट लाया था जिससे अजय का अफेयर चल रहा था। राधिका के कुछ पड़ोसी भी कोर्ट आए थे जिन्होंने गवाही दी कि कैसे वो उनके घर के बाहर आकर हंगामा मचाता है, राधिका के बारे में गंदी बातें करता है। अभिजीत ने वीडियो भी सबमिट कर दी, एफआईआर की कॉपी दिखाई और साथ ही उस पड़ोसी से गवाही दिलवा दी जो राधिका को हॉस्पिटल लेकर गया था। अजय गुस्से से तिलमिलाकर रह गया। सब बातें साफ हो चुकी थीं। अजय के खिलाफ जो सबूत थे और राधिका का जो कहना था, उसके बेस पर डिवोर्स को मंजूरी मिल गई थी। अजय की राधिका पर जानलेवा हमले और उसके घर के बाहर किए हंगामे के कारण उस पर जुर्माना लगाया गया था और साथ ही राधिका और उसके परिवार से दूर रहने के सख्त आदेश दिए गए, वो भी इस चेतावनी के साथ कि अगर अब उसने राधिका या उसके परिवार को किसी भी तरह परेशान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे जेल हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कोमल और भैया भाभी से भी दूर रहने की हिदायत दी गई थी उसे, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी है तो अजय का गुस्से से तमतमाया चेहरा, घूरती निगाहें साफ जाहिर कर रही थीं कि अब वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। अजय ने सांस दांस तन भेद सब अपनाया था, पर उसके गुरूर की बुरी तरह हार हुई और राधिका की सच्चाई जीत गई। कोमल विजय भैया और भाभी के पास चली गई थी। अजय राधिका को चेतावनी भरी नजरों से घूरता हुआ वहां से निकल गया था। थैंक्स अलॉट, राधिका ने तहे दिल से अभिजीत का शुक्रिया अदा किया और जवाब में अभिजीत मुस्कुरा दिया। थैंक यू की जरूरत नहीं, बस अपनी डील याद रखिएगा और कभी आइएगा मुंबई तो मौका दीजिएगा हमें अपनी मेहमान नवाजी का, फिर आपको अपनी मिसेस से जरूर मिलवाऊंगा। जी, राधिका ने हामी भर दी। बीते दिनों हुई अभिजीत से मुलाकात में उसे उसका कैरेक्टर और नेचर दोनों ही बहुत पसंद आया था। अर्पिता तो आज अभिजीत को केस लड़ते देखकर उसके पीछे पागल ही हो गई थी, तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी और अभिजीत उसकी मासूमियत और बचपने पर मुस्कुरा रहा था। आशुतोष जी ने तो उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए थे, जिस पर उसने बड़ी ही विनम्रता से उनके हाथों को थामते हुए नीचे कर दिया था। अंकल, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो बस अपना फर्ज ही निभाया है। इनफैक्ट मैं इस फैसले से पूरी तरह सेटिस्फाइड भी नहीं, क्योंकि मैं तो अजय को जेल की सलाहों के पीछे देखना चाहती थी। जब जेल में अच्छे से उसकी खातिरदारी होती तो सारी अकड़ निकल जाती और अपने गुनाहों का एहसास भी हो जाता, पर राधिका ये नहीं चाहती थी, तो मैंने बस वही किया जो वो चाहती थी। अजय अब आप सबसे दूर ही रहेगा, फिर भी अगर कभी परेशान करे तो मुझे ज़रूर बताएगा। इतनी धाराएं लगाऊंगा उस पर कि सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। अंत में उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। खैर, राधिका को बहुत मुश्किलों के बाद ही सही पर इस टॉक्सिक रिश्ते से आज़ादी मिल गई थी, इसीलिए सभी खुश थे। पर आगे का सफ़र भी चुनौतियों से भरा था और अब राधिका को अपनी पहचान के लिए, अपने सपनों के लिए फिर से लड़ना था। ये लड़ाई थी समाज से, उनकी सोच से, अपने अतीत से। टू बी कंटिन्यूड।